जैसे भगवान ने निर्देश दिया कि पहले पहले मिले उसको गुरु बना लेना, तो सबसे पहले नारद जी की दृष्टि में मछली का पकड़ने का जाल लिए धीमर मिल गया उनको, मछुआ जिसको कहते हैं। अब सामने कालू कीर धीमर मच्छी पकड़ने वाला मछुआ मिल गया। नारद जी ने विचार किया, रे चोखा गुरुजी मिले माने तो, अरे एड नहीं हमें आवनो, कोई चौको आदमी आ जाता हो तो न्याल हो जाता को नहीं। अब गुरु ही बनाऊ तो एड ने कई गुरु बनाऊ, फिर भी भगवान ने आज्ञा दी है कि उसको बनाओ तो भाई बनाना पड़ेगा ही, हम करें क्या। पूछ लिया, नहीं पूछते तो और कुछ से बना लेते, कोई बात है तो नहीं तारा भाई से ही, परंतु कह दिया कि जो पहली बार मिले, और इनको यदि गुरु नहीं बनाया तो भगवान ने पूछा तो वापस जवाब क्या दूंगा, बढ़ाना तो पड़ेगा ही। ग्लानि आई, परंतु भगवान की आज्ञा से उस कारो कीर को अपना गुरु बना लिया, उसके चरणों में प्रणाम किया, आज से आप मेरे गुरु महाराज हो, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम है, बोलो गुरु भगवान की। गुरु बना लिया। अब घूमने लगे, आप मन में बड़ी प्रसन्नता है कि अब मैं नुगरा नहीं रहा, गुरु बना लिया, मैं नुगरा नहीं रहा हूं। गुरु बनाने के साथ में हृदय में संतोष हो गया कि मेरी बड़ी भारी कमी थी, वो कमी आज भगवत कृपा से दूर हो गई, गुरु महाराज ने दूर कर दी। जो आज गुरु बनाया, दूसरे दिन में और गौरव आने लगा को मेरा एक दिन आज सुगरे का बीत गया, गुरुमुखी बनने का हो गया, कितनी खुशी की बात है। इतने दिन जो भारीपना लग रहा था आज हल्कापना लगने लगा है, बहुत बढ़िया हुआ। ऐसे करते करते अब कई दिन बाद में वापस भगवान से मिलने की इच्छा हुई, चलो वैकुंठ चलते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। अंतर्यामी परमात्मा के पास में वंदन करने के लिए गए, आज तो पूछेंगे तो बता दूंगा मैंने गुरु बना लिया यार हो गया। अब अंतर्यामी परमात्मा के पास में गए और नारद को गुरु तत्व का बोध कराने के लिए भगवान ने जाते ही पूछा, क्यों नारद मुनि आपने गुरु बना लिया कि नहीं? हाँ महाराज, जिस आपने आज्ञा दी मैंने गुरु बना लिया, गुरु बना लिया। आपके तो गुरु जी बड़े पहुंचवान होंगे, कौन सी महात्मा जी मिले, किनको गुरु बनाया है, क्या मैं भी उनके दर्शन कर सकता हूं? अब नारद जी का मुंह उतर गया, केड़े गुरु जी नाम बतावा, एकदम चेहरा फीका पड़ने लगा, कौन है आपके गुरु? जब ये बात पूछी तो ग्लानि पूर्वक नारद जी ने कहा, महाराज मेरे तो गुरु जी अत्यंत दीन हीन नीच जाति के कालू जीवर है, वो गुरु मिले आपने कहा कि वो, अरे महाराज आपने ऐसा हुक्म दिया, कोई अच्छे पंडित जी मिलते, अच्छे विद्वान महात्मा मिलते, उनको बताते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन आपने कहा जो पहले मिले उसको गुरु बनाओ, तो मेरे भाग में यही जीवर लिखा था, जीवर मेरे गुरु है। अब जब भी उसने ये बात कही कि नी जाति का कालू कीर मेरा गुरु है, बात सुनकर के भगवान को बड़ा क्रोध आ गया और नारद जी से कहने लगे, ऐ नारद तेरे गुरु बना करके गुरु का अपमान किया है, गुरु महाराज के ऊपर ग्लानि कर डाली, इतना मां बाप किया है, जाओ उसके दंड के रूप में 84 भोगनी पड़ेगी तुम्हें, 84 लाख योनियों का मार्ग तुम्हें भटकते रहोगे। अब करते क्या, नारद जी ने अपनी भूल स्वीकार कर ली, हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में मस्तक लगा दिया, अरे भगवान सामने मौजूद है परंतु वे गुरु तत्व की महिमा बताना चाहते हैं, गुरु जी भी बताएंगे तो भगवान को ही, लेकिन वे कहते हैं कि इसके मार्फत काम को, कोई बिजली को काम लेना तो है पर डायरेक्ट काम बदलो, इसको किसी न किसी मशीन के माध्यम से काम में ले आओ, इसमें भी आप डायरेक्ट अगर बिजली लगा दोगे तो क्या पावर मशीनरी काम आएगी, ये बिजली बोलने वाले मशीन है, दूसरे और कोई जितनी मशीनरी है सब के सब जो बिजली से काम आने वाले डायरेक्ट काम आने वाले नहीं है, वो तो अपने मशीन के माध्यम से काम आएगी तो उसका उपयोग अच्छा होगा। तो गुरु के माध्यम से मेरा परिचय होता है, वो वास्तविक परिचय होता है। उसके बिना सीधा परिचय कोई करना चाहे तो वो वास्तविक परिचय नहीं हो पाता। इसलिए तुम्हें 84 का दंड भोगना पड़ेगा, 84 भटक कर जाओ। नारद जी ने प्रणाम करके अपनी भूल स्वीकार की, घबराने लगे। कांपते हुए नारद जी ने कहा, महाराज गलती हो गई, अब कृपा करके इस 84 छुटकारे का उपाय बताओ। भगवान ने कहा, मैं 84 में भटक सकता हूं लेकिन 84 से मैं बाहर नहीं निकाल सकता। हरि उपजाया जीव सब 84 में जाए। जितने भी संसार में पैदा हुए पैदा किए हुए प्राणी है, भगवान के पैदा किए हुए हैं, परंतु उनके पैदा किए हुए होने पर भी वे सीधे नरक में जाते हैं, नरक में जाते हैं, क्योंकि भजन करते नहीं। परंतु जिन्होंने गुरु महाराज का आशा ले लिया, गुरु महाराज ने जिनको नवीन जन्म दे दिया, वे कभी भी 84 में नहीं जाएंगे। वे 84 से पकड़ करके उसको बाहर खींच लेंगे और उसको भगवान भी रोक नहीं सकते। गुरु महाराज ने जिसको भेज दिया है, भगवान कहते हैं कि तुम निसंकोच मेरी आओ। निजपुर निर्वेश राम राम गुरुमुख हुई काशी, निजपुर निर्वेश हो यहां सी। ये भगवान के वचन हैं कि गुरुमुखी बनकर के गुरु महाराज की आज्ञा से मिलने वाले भगवान के नाम का जो उच्चारण करेगा, जो जप करेगा, जो गुरु महाराज साधन बताते साधन करेगा, वो अपने मेरा जो धाम है उसके लिए अपना घर है। मेरा धाम अपना घर है और इस अपने घर में वो निशंक आ सकता, कोई रोकने वाला नहीं है। निजपुर निर्भय, कोई डर नहीं उसको, भो नहीं है। पराए घर में पैर रोको तो डर लगता है कि किसी के घर में जा रहा हूं, कोई क्या कहेगा क्या कहेगा। तो अपने घर में जाते हो किसी को डर लगता है क्या कि अपने घर में मैं क्यों पैर रखना हूं, कोई क्या कहेगा। पराए घर में जाते हैं, चोर चोरी करने के लिए जिस घर में जाता है छाती धड़कती है, पर वही अपने घर में पैर रखता है तो धड़कन नहीं होती है कि मैं अपने घर में जा रहा हूं, कौन रोकने वाला। इसलिए वहां गुरु महाराज का बताया हुआ जो मेरा घर है वो अपना घर है, और अपना घर होने के नाते वो प्राणी आसानी से वहां पर आ सकता है। निजपुर निर्भय सो यहां आसी, ये भगवान के हुए वचन है। तो गुरु महाराज मैं 84 में पटक सकता हूं लेकिन छुड़ा नहीं सकता, तो महाराज अब निकालेगा कौन। गुरु जी की शरण में जाओ, केवल वे ही ये काम कर सकते हैं। ये विभाग उनको सौंपा गया है, मिनिस्ट्री में अलग अलग विभाग देते हैं ना, तो ये काम गुरु महाराज को सौंपा हुआ है, वो ये काम करेंगे। ठीक है, जो आ गया आपत के मारे क्या नहीं करे। गया वो दुखी होकर के नारद उस धीवर जी के चरणों में जाके प्रणाम करने लगा, दंडवत महाराज, गुरुदेव जी महाराज दंडवत। अब बच्चा सुखी रहो क्या महाराज, क्या सुखी रहो महाराज, आपत आ गई, दुखी हो गया मैं तो। क्या हुआ कि मैं जो बात थी सही सही वह खोल करके बता दी, ऐसी थी आपके विषय मैंने ये बात कह दी, तो भगवान नाराज होकर के मुझे श्राप दे दिया कि 84 भुगत। अब छुड़ाने के लिए कहा तो वो कि मैं नहीं छुड़ा सकता, गुरु जी के पास में जाओ। अब जो छोटे पहुंचा हुए कम से कम वो निकाल तो सके, लेकिन उन्होंने कर दिया, अब आप कृपा करके 84 छुड़ा। तो अब कृपा करो, मैं आपके शरण में आया हूं। धीमर काड़ू झीमर कहने लगा नारद जी, वे देखो मैं तो हूं पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं तो मेरी मछली मारने का काम करता हूं, परिवार का पालन पोषण करता हूं, यही मेरा काम काज है, और कोई है नहीं। तो तुम ऐसा करो, मुझे मालूम ही नहीं है कि 84 है कौन सी, अब 84 का नाम मालूम हो तो मैं तुम्हें बाहर निकालूं। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम भगवान के पास में चले जाओ वापस, भगवान के पास में जाकर के और उनसे कह देना कि महाराज गुरुजी ने कहा है कि 84 कौन सी है, जो 84 भोगनी है उनकी सारी लिस्ट हमारे को बता दो। इस तरह जो लिस्ट बतावे तुम्हारे को, नाम लिस्ट देवे, वो लिस्ट नाम देते ही तुम उस लिस्ट के ऊपर लोटपोट हो जाना, उस पर सो जाना, चारों तरफ से उलट पुलट करके लेट पेट हो जाना, बस तेरा काम बन जाएगा, 84 कट जाएगी, क्योंकि सारी 84 तुम शरीर से नीचे दबा दोगे, 84 नष्ट हो जाएगी। बढ़िया बात है, सब बहुत अच्छी बात है। वो गए, चूक हमारी किम मिटे दाता निधि परमा। अब जो ही वे भगवान के पास में पहुंचे, कहा क्यों 84 काट करके आ गए महाराज? 84 काटे क्या, मेरे गुरुजी ने कहा 84 का नाम मैं जानता ही नहीं, इसलिए 84 की लिस्ट बता दो, 84 लाख योनी कौन सी है, जलचर कितनी, थलचर कितनी, आकाशवाणी कितनी, कीट पतंग कितने, मनुष्य कितने, इत्यादि कितने, सब कृपा करके आप बता दो तो ये काम बनेगा, बाद में मैं 84 काटूंगा, ऐसी बात है वहां। तो फिर भगवान ने वहां जहां बैठे थे वहीं पर पूरी लिस्ट, जैसे टाइप करते हैं ना कागज पर, तो जमीन पर वो पूरी लिस्ट वहां से A to Z लिखने चालू कर दी। जो पूरी लिस्ट लिखा गई कि ये है पूरी 84 लाख योनि की लिस्ट, नारद जी जहां बैठे थे वहीं से उचक करके गए और लिस्ट के ऊपर लेटने लगे, लोटपोट होने लगे, घटक 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 घुड़े इन प्रकार चारों तरफ बैठ घुड़े लगे। तिरुपति गया जो कहा देखो ना कई जन डंडोता क्रिया करे, गुड़ता गुड़ता डंडोता करे, हो गुड़ बोक रहे, गुड़ता गुड़ता पर्क मे वे इस प्रकार वो। तो ये भगवान कहने लगे नारद जी क्या कर रहे हो महाराज? 84 काट रहा हूं और क्या कर रहा हूं, गुरु जी ने यही उपाय बताया है कि जो 84 लिख के देवे उनके ऊपर तुम लौट जाना, तुम्हारी 84 कट जाएगी। बात सुन करके भगवान को हंसी आ गई थी, देखो नारद अब बात समझ में आएगी नहीं, मैं बड़ा हूं गुरु बड़े हैं, बताओ मैंने तो तुम्हें 84 लाख में पटक दिया, भटका दिया और ऐसा दंड दे दिया जो लाखों वर्षों तक भी भोगते भोगते पार नहीं कर सकते, परंतु गुरु महाराज ने युक्ति के द्वारा इस तुम्हारी 84 को मिनटों में पार कर दिया, देरी लगाई नहीं, तकलीफ भी दी नहीं और बिना तकलीफ दिए तुम्हारा काम कर दिया। इस प्रकार गुरु महाराज की जो शक्ति मेरे से भी 80 लाख लिख पत्र लोट पोड़ता पर सही, तो इस प्रकार ये जो मेरे से ज्यादा बढ़कर के सदैव गुरु कृपा हुआ करती है। मुनि तबे तत्काल सर्व पात्रम लिखवाये ता पर लोटन कीन गुरु मुझे बुद्ध सिखाये, अवगत संत सवाय सवाल गुरु गोविंद ते भारी, मैं तो संकट कीन गुरु छिन मैं सब टारी, गुरु दोष गुरु ते मिटे कटत कटत सब पाप, बिन गुरु गम नहीं उधरे लूटे तिरविद ताप। जिसने गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा भावना हृदय में नहीं धारण की वो 3 प्रकार के ताप में पिटा रहेगा, पिटता रहेगा जन्म जन्मांतर तक, उसका बचाव होना संभव नहीं है। और जिसे 3 ताप मिटाने हैं वो गुरु महाराज के शरण में चले जाओ, उनकी कृपा से सब प्रकार के संताप हमारे दूर हो जाएंगे। दूर जो दुनिया 3 ताप में जली जा रही है, अध्यात्मिक अध्यात्म अधिदेव अधिभौतिक, 3 प्रकार के ताप है और 3 ताप का निवारण गुरु महाराज कृपा करके बता देते हैं। त्रिविधि कर्मियो रहने न पावे, ये बात बताई गुरु महाराज ने कि 3 प्रकार के कर्म वो रह नहीं पाते हैं, संचित क्रियमाण प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म है, ये सारे सारे कर्म है वो गुरु महाराज की कृपा से हमारे दूर हो सकते हैं बहुत आसानी से। और देख देख सुखदेव ताय सम औरन कोई, ज्ञानवंत बलवंत जति घोर के इमजोई। अरे देखो देखो सुखदेव जी को देखो, उनके समान दूसरा कौन होगा? शंकर भगवान खुद ही सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के आए, शब्द रूप में प्रकट होकर के आए शंकर भगवान, क्योंकि तोते में उनका शब्द ही तो गया और वो तोता व्यास जी की पत्नी के मुंह में ओके पेट में चला गया और वो पेट से सुखदेव बनकर के प्रकट होकर के आ गए। आते ही संसार का मुख नहीं देखा, वन में चले गए, आते ही वन में चले गए, जन्म लेते ही इधर जन्म लिया इधर वन में चले गए। तो वहां उन्होंने अपनी साधना की और ऐसे तपस्वी बने उनकी क्षमता करने वाला दूसरा कोई नहीं। साक्षात गोरख जी के समान वे जति बड़े ज्ञानवान बड़े बुद्धिवान। एक बार उन्होंने विचार किया कि चलो वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ में जाने लगे, वैकुंठ में बढ़ने लगे। जो आगे जाने लगे हैं तो आगे जाते जाते उनको आकाशवाणी सुनाई दी, ठहरो अभी आगे मत बढ़ो। बात ऐसी है, आगमन गुरु बिन नाही, तुम लोगों ने गुरु जी का शरणा लिया नहीं है, इसलिए गुरु के बिना यहां वैकुंठ में तुम्हारा प्रवेश मना है, यहां मत करो। तुम बल सभी लुट, तुम्हारे जितने भी ज्ञान ध्यान इत्यादि के बल हैं, मेरे लिए बिल्कुल एक रत्ती के समान है, कुछ काम के नहीं है। मैं इनको कुछ भी गिनती में नहीं गिनता हूं, केवल भार रूप मानता हूं, और इसको मिटाना है, दूर करना है, भार को हल्का करना है तो गुरु की शरण में जाओ। जो आठों पौर अष्ट जाम रट राम दया दीनत सब धारण, मान मोह सब जात उलट मन को पुनिमारण, अनत अनत जो ध्यान अनत इत्यादि करे है, बिन गुरु फूस समानता है दर्शन कुण करे है, आद अंत मद ठोर नहीं सत नहीं ठोर नहीं सत्य सत्य कर समान, दीन वचन सुन सुखदेव थर शंक मन आण। अरे जो आठों पौर भगवान का भजन करे, दया भी रखे दीनता भी रखे मान मोह इन सब को अलग रखे, मन को वश में कर ले, और भी अनेकानेक प्रकार के ध्यान रखे, न मालूम कई कई प्रकार की विचारधारा के माध्यम से साधना में लगा रहे, परंतु ये सब करे मनमुखी बन करके गुरु महाराज की आज्ञा के बिना होकर के ये सारे काम करता है, ऐसे आदमी का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। आद अंत में उसको कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं है। मैं सच्ची कहता हूं, बात सच्ची कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं, सच्ची मानो। जब ये दीन प्राण बात सुनी सुखदेव जी ने, उनके हृदय में कंपन पैदा हो गई, थर्रा गए बेचारे और घबरा गए, अब क्या करूं। अति दुखी होकर के उल्टे आए, पिताजी के पास में आकर के सारी बातें बताई, जो पिताजी उनके पीछे लेने के लिए गए थे परंतु उनके बुलाने पर वे नहीं आए। परंतु आज ये जो शंका पैदा हुई कि जो मुझे तो वैकुंठ में जाने के लिए मना की जा रही है, आगे रास्ता नहीं है, इसलिए अब मैं क्या करूं, किससे पूछूं, तो पिताजी से जाकर के उन्होंने ये बात पूछी। अब पिताजी से जाकर पूछी कि मैं किसको अपना गुरु बनाऊं, आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पुराणों के रचयिता हैं, इसलिए कृपा करके मुझे उपाय बताइए, मैं किसकी शरण में जाऊं, किसको गुरु बनाऊं। संत विदेही जनक, जनक सदगुरु मुनि कर है, तो उनकी बात पिताजी की बात मान। पिताजी ने कहा बेटा अगर तुम गुरु बनाना चाहते हो तुम ऐसा करो, जनक राजा विदेह राजा जो है जनकपुर के, उनको जाकर के अपना गुरु बना लो। महाराज मैं इतना ज्ञानी इतना उच्च कोटि का तपस्वी एक साधक बाबा ब्रह्मचारी, एक राजा के पास में जाकर के राजा को अपना गुरु बनाऊं। परंतु ये मन में बात आई, फिर भी मन की बात को रोक करके रखा, कह दिया पिताजी चलो मान लो कोई बात नहीं, गुरु राजा को गुरु बनाऊं। अब इस प्रकार की बात सुनी तो नारद, उस समय नारद जी वहां से धीरे धीरे चल दिए जनकपुर की तरफ। जनक महाराज राजश्री ठाटबाट से अपने महल में विराजमान है। आजकल तो शहर परकोटों से पौड़ों से बाहर निकल गए, पहले किले में जाने के लिए बहुत सी पौड़े पार करनी पड़ती थी, तो वहां सात मुख्य पौड़े थी, सात दरवाजे थे, उन दरवाजों को पार करके अंदर महल में जाने की प्रक्रिया पार करनी थी। सुखदेव जी महाराज नगर में पहुंचने के बाद राजमहल के पहले दरवाजे पर पहुंचे, पहरेदार ने कहा, बाबा कहां जा रहे हो, क्या काम है? मुझे जनक महाराज से मिलना है, आप बैठिए, मैं महाराज से पूछ के आता हूं। बैठा दिया वहां पर, अंदर गए और उसे जाकर के पहरेदार ने जनक महाराज से कहा कि एक ऐसा बाबा सुखदेव को मिलने हैं आपसे, उनसे कहना जाकर के। जवाब दिया राजा ने, 7 दिन में बाद में मिलने के लिए आना, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। 7 दिन तक बैठा दिया दरवाजे पर, बैठे रहो बाबा, 7 दिन बाद में आपके लिए परमिशन मिलेगी। एक दरवाजे पर 7 दिन और 7ों दरवाजे पर, एक एक दरवाजे पर 7-7 दिन रोक दिया, अगले दरवाजे पर रोक दिया, फिर अंदर रोक दिया, फिर रोक दिया। सुखदेव जी परेशान हो गए कि ये कोई राजा से मिलना है, कोई बात है, तूफान है। सीधे सीधे आदमी को, साधु को इस प्रकार रोका जाता है? ये समझदारी बिल्कुल नालायक लोग है, कुछ समझते ही नहीं। साधु को तो तत्काल आमंत्रित करके, अगवाई करके सामने अंदर लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, मन मन बुड़बुड़ा रहे, लेकिन सुने कौन? 7-7 दिन तक, लेकिन गर्ज भी तो है इनको, है अगर छोड़ के जावे तो मना कौन करे, लेकिन गर्ज पूरी कैसे हो? इसलिए वहां पर इंतजार करते रहे, जो भी टाइम बताया, एक दरवाजा, दो दरवाजा, 3 दरवाजा, 4, 5, 6, 7ों दरवाजे पर। जब सब दरवाजे पार करने के बाद आखिर में सुखदेव जी अंदर पहुंचे, राजा साहब सिंहासन पर विराजमान है, सोने का सिंहासन है, चमर ढुलाई हो रही है, सखी सेवा में पंखा ढुला रही है, कोई जल की झाड़ी लिए खड़े हैं, कोई औदोष पात्र है, कोई हाथ जोड़े सामने जय जयकार कर रहे हैं, सारे लोग बाग बैठे हैं। राजा के ठाट बाट को देखा, वो वही बैठे रहे, कोई साधु आया तो उठ के सम्मान करना चाहिए, सम्मान भी किया नहीं। सुखदेव जी कह, देखो मैं तो त्यागी हुई हूं, लेकिन आकर के सामने सम्मान करना भी नहीं आता राजा। ये तो देखिए लक्कड़ मालूम पड़ गया कि ये तिला में तेल कोनी, फिर भी बैठे रह गए। राजा ने सुखदेव जी से कहा, आओ बैठो बाबा, आओ बैठ। वहां बैठाया उनको, महाराज कैसे आए हो, कैसे आए बताओ, आया तो मैं गुरु बनाने के लिए हूं आपको, मुझे गुरु बनाने के लिए आया आप, क्यों? क्योंकि मैं जब वैकुंठ में जाने लगा तो वहां पर रास्ते में मना कर दिया, गुरु के बिना तुम यहां आगे आ नहीं सकते, इसलिए अब किसके पास बनाऊं? तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी ने आपका नाम बताया महाराज, इसलिए। इतने में तो वहां पर जहां बैठे थे राजा, दौड़ता दौड़ता बाहर से सिपाही आया और सिपाही ने आकर के संदेश दिया, महाराज महाराज आपके नगर के पूर्व द्वार पर आग लग गई है, आग लग गई है। अरे लगने दो कोई बात, राजा निश्चिंत बैठे रहे। दूसरे आदमी ने कहा, पश्चिम में लगी है, उत्तर में, दक्षिण में, 4-5 आदमी ने आकर के सूचना दे दी। राजा निर्भय बैठे रहे, किसी से कुछ नहीं कहा कि भाई कम से कम आग बुझाने वाली गाड़ी ले जाओ और उनको ठंडा करो, ऐसा कुछ नहीं, बैठे रहे आप। एक द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज आग तो दरवाजे तक पहुंच गई, दरवाजे तक आग आ गई है महल के द्वार पर। सुखदेव जी खड़े हुए, मेरी कोपिन बार पड़ी गई, जल नहीं जाएगी, होगा उठे खड़े हुए। राजा ने कहा जा रहे हो सुखदेव जी? मुनि मेरी कोपिन और बार पड़ी गई, जल नहीं जाए, इसलिए जा रहा हूं। मेरा तो पूरा शहर जल रहा है, आपकी कोपिन नहीं जल, उसके लिए आप इतनी ममता कर रहे हो? पूरा नगर जल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसकी परवाह नहीं आपको? एक एक 4 अंगुली कपड़े की परवाह इतनी? सुखदेव जी को शर्म आ गई, बैठ गए चुपचाप, रहे क्या करो। वास्तव मैंने तो देखा राजा में कोई लक्षण है नहीं, लेकिन राजा ने आते ही पहले तो कान पकड़ लिया, पहले से ही मेरे में कोई लक्षण नहीं है, देख लिया, समझ लिया। अब कहा, महाराज आपको गुरु दीक्षा लेनी है? हां, इसके लिए एक परीक्षा देनी पड़ेगी आपको। परीक्षा दीजिए महाराज। क्या परीक्षा देनी? कोई पेपर छपा हुआ है क्या बात है? नहीं, छपा हुआ पेपर कुछ नहीं है। आप ऐसा करो, अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ भैया तुम प्याले दो लेके आओ और दोनों प्यालों में तेल भर करके ले आओ, किनार तक पूरा का पूरा प्याला भरा रहे मुंह तक, ऐसे प्याले भर करके ले आओ। लेके आए और सुखदेव जी के हाथों में पकड़ाया, दोनों हाथ में दोनों प्याले दे दिए तेल भरे हुए और कह दिया, देखिए महाराज अब आप जाओ, मेरा नगर देख करके आ जाओ, बाग बगीचे में घूम करके आ जाओ, जहां नृत्यशाला जहां अंगनाएं नाच करती है वो देख के आ जाओ, कहां पर मदिरालय है वो देख के आ जाओ, कहां पर बाग बगीचे वो देख के आ जाओ। प्याले हाथ में उठाए, पर याद रखना कहीं तेल की बूंद अगर नीचे गिर गई कि नंगी तलवार लिए पहरेदार साथ में चल रहे हैं वही आपकी गर्दन काट देंगे। तेल की बूंद नहीं गिरनी चाहिए। आप जाओ पूरे नगर में घूम के आइए, नगर देख के आ जाइए। अब सुखदेव जी ने प्याले हाथ में उठाए, निजर दोनों प्यालों के ऊपर कहीं छलक गया तो अभी गर्दन काट देंगे। अब वो धीरे 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 कीड़ी की चाल चलने लगे, चलते 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 जहां सिपाही लोग ले जाते घूम फिर करके वापस ज्यों त्यों करके आ गए, महल में पहुंच गए, प्याले नीचे रखे, जीव में जीव आयो, जीव तो आए तो क्यों नहीं, तो मौत ही पुर गई। राजा जोगी अग्नि जल यहां की उल्टी रीत, डरता रह जो परशाम थोड़ी पारे प्रीत, क्या मालूम कौन सी थे मार देने का कोई भरोसा नहीं, आदेश दे दिया तो दे दिया, वापस आ हुआ करके बैठे। अब राजा ने कहा, क्यों साहब शहर में घूम के आ गए? कहा घूम तो आ गए, शहर देख लिया। तुम राज शहर देखूं कि प्याला देखूं? शहर देखूं प्याला देखूं? मेरे तो प्याले से निजर इधर भी उधर भी नहीं गई, शहर कौन देखे महाराज? बस तो आप मन में विचार कर रहे थे नहीं कि राजा होकर के ज्ञान कैसे देगा, तो मेरा ज्ञान ये इस प्रकार का है, आप समझ दीजिए। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूजे श्री भगवान। पहले नंबर में हमेशा मृत्यु को याद रख करके, मृत्यु की तलवार आपके गर्दन पर लटक रही थी, क्यों नहीं देख पाए आप? क्योंकि तलवार कहीं गर्दन पर नहीं चली जाए, कहीं मैं मर नहीं जाऊं, इसलिए कुछ नहीं देख सके। मैं इतने राज में सुख वैभव में ठाट बाट में रह करके भी इस प्याले के समान निजर तलवार के ऊपर रखता हूं, मौत के ऊपर मैं दृष्टि रखता हूं। तो मौत पर दृष्टि रखेगा वो कैसे भी संसार के भोगों में क्यों नहीं पड़ा रहो, कितने भी वैभव में कितने भी ऐशारा में क्यों नहीं पड़ा रहो, कोई भोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और किसी प्रकार उसको संताप नहीं दे सकते। इसी प्रकार सुखदेव जी ने चरण पकड़ लिए राजा के, महाराज समझ गए वास्तव में आप मेरे गुरु बनने लायक हो। मेरा अहंकार था आज तक, उस अहंकार को मिटाने के लिए ही मेरे पिताजी ने आप जैसे गुरु के पास से मुझे भेजा है, निहाल कर दिया, आपको पाकर के मैं धन्य हो गया, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है। इस प्रकार जनक महाराज से की गुरु दीक्षा प्राप्त की सुखदेव जी ने। तब कहीं जाकर के संत बदेई जनक सदा जय जय भुगसाम, सत्य गुरु संत प्रताप संत वंचत सब धामम, सदगुरु शरण प्रताप ते परम धाम निश्चय गए, अवगत ते गुरु अधिक नित सत्य सत्य मुख मुख गए। सत्य के ये बात बिल्कुल सत्य है, सत्य है ये बात संत महात्मा निश्चित रूप से सब लोगों को सुनाया करते हैं बताया करते हैं। सत्य सत्य गुरुदेव सुखदेव सत्य ही सत्य जन भाषत, बिन सदगुरु नहीं ठोर और ऐसा कुण राकत, सदगुरु संत दयाल संत बिन अवर न कोई, पांव पंक बिन जीव रंज संचत नहीं होई, परमात्म गुरुदेव जन श्री मत सो सत कहे, बिन गुरु सो बेमुख मुड़ नरक कुंड निश्चय रहे। श्रीमद भागवत भी यही बात बताती है कि गुरु महाराज का आश्रय लो, उनके शरण में गए बिना मूर्ख प्राणी को नर कुंड से कोई भी बचा नहीं सकता। जो निश्चय रूप से गुरु महाराज के शरण में चला जाता है वो अवश्य ही सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के और अपना जीवन धन्य कर लेता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। वे मुख पाप अपार कदे जीवन ही उधरना, गीता मुनि अनुसार नारद पंचरात्रि कही। पंचरात्र जो ग्रंथ है उसमें नारद जी महाराज ने स्पष्ट रूप से ये बात बताई है कि विमुख जो है गुरु महाराज से विमुख रहने वाला, एक तो गुरु महाराज को पहचानने वाला ही नहीं, एक तो वो होता है निगुरा और एक होता नुगुरा, जो गुरु महाराज बना करके उनकी मर्यादा का पालन नहीं करता वो होता नुगुरा। तो निगुरा का है उसका उद्धार आसान है पर नुगरे का उद्धार संभव नहीं है। विन विमुख पाप अपार, जो गुरु महाराज से विमुख रहने वाला है, जो वो कहे उस बात को नहीं मानने वाला, उसका कभी भी उद्धार संभव नहीं है, कभी भी उद्धार संभव नहीं है, क्योंकि उसको क्षमा करेगा कौन। गुरु महाराज के पास में रह करके तो जो कोई भी मान लो दोष करता है तो गुरु महाराज से क्षमा याचना करके क्षमा करा सकता है, परंतु गुरु से विमुख होकर के अलग हो गया, गुरु जी में लूण लखन कोनी, ऐसा मैं ज्यादा गुणवान हूं, मैं ज्यादा होशियार हूं, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा योग्य हूं, ऐसा मान करके जो गुरु जी से अलग हो गया तो अलग होकर के अपना प्रभाव बताने लगा कि सब मैं हूं, तो ऐसा अब वो जो अलग होने का दोष कर रहा है उस दोष को क्षमा कौन करेगा, भगवान तो करेंगे नहीं। जिसका केवा अपराध है खुद वही क्षमा कर सकता है, गुरु महाराज का केवा अपराध गुरु महाराज ही क्षमा कर सकते हैं, और गुरु के शरण में तो जाएगा नहीं और नुगरा बन करके अलग बना रहेगा, तो इसलिए वो पाप अघोर पाप बताया है जो कभी मिटने वाला नहीं है। कदे जीव नहीं उदरण, कभी भी उस जीव का उद्धार संभव नहीं है। ये बात शास्त्रों में भली भांति बताई गई है ना, सर्व ग्रंथ में ऐसे कही है, भगवत भाई के निर्णय लिए भगवान के वचन भागवत जी में ये बात बताई, जो भगवान के साक्षात पार्षद थे वे ही संत का अपराध करने पर 3 जन्म तक दोषी बने, यद्यपि संतों ने उन्हें क्षमा प्रदान कर दिया था, परंतु उनके भाव को सफल करने के लिए भगवान ने 3 जन्म तक उनको जन्म लेने के लिए विवश कर दिया, उनको परवश कर दिया कि 3 जन्म तुम्हें जन्म लेने ही पड़ेंगे। मर मुर जूण असुर की पाई हुई आश्री योनि में, और जब वे सन्मुख हुए उनका बंधन छूट गया। भगवान के वचन है, हूं तमके नित हाथ विकाऊं आज्ञा करो तो वे गई आऊं, ऐसे महापुरुषों के जो सम्मुख रहने वाला है भगवान कहते हैं कि मैं सदा तुम्हारे हाथ बिका रहता हूं, आप मुझे जहां आज्ञा दे दो मैं वहां पर थोड़ा थोड़ा आऊंगा। मैं ऐसे महापुरुषों के लिए कितने ही अवतार धारण करता हूं, कितने ही जन्म लिया करता हूं, जीवन प्राणो वास वसेता, मैं जिंदा जीवित भी रहता हूं तो ऐसे महापुरुषों के लिए जीवित रहता हूं। ये जो 10 अवतार भगवान के माने जाते हैं, 24 अवतार में से 10 अवतार प्रधान, मत्स्य कच्छ वरा नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण इत्यादि जो नाम 10 अवतार है, ये ही बताए कि भगवान ने भक्त के लिए 10 अवतार धारण किया है। अम्बरीश जी की जो कथा आप लोग भागवत में सुनते हैं, अम्बरीश जी की जो कथा सुनते हैं उसमें प्रसंग आता है कि आखिर में जब अम्बरीश राजा के शरण में आए, दुर्वासा जी अम्बरीश जी के शरण में आए तो सुदर्शन चक्र का संकट मिटा दिया उन्होंने, सुदर्शन जी का चक्र दुख मिटा दिया, तो दुख मिटाने के बाद भोजन प्रसाद कराया, ये किया, स्वागत सम्मान करके उनको विदाई देवी क्षमा याचना करने के बाद अम्बरीश चले गए भगवान के पास में बैठे। एक दिन दुर्वासा जी कहने लगे, महाराज एक मन की बात है मैं कहना चाहता हूं आपको। बोलो महात्मा जी क्या बात है। बात यह है, मैं जब अम्बरीश के पास में गया तो उस अम्बरीश ने मुझे इतना तंग किया महाराज, 12 महीने तक मुझे बुरी हाल से भटकाया, कहीं मुझे ठहरने नहीं दिया, पानी पीने दिया नहीं, श्वास लेना मुश्किल कर दिया मेरा, आप गया बुरे हाल से। अरे आपके पास में आया तो आपने ही मना कर दिया, इतना मुझे 12 महीने तक उस अम्बरीश ने परेशान किया है। मैं हूं तपस्वी साधु हूं, कम से कम साधु को दुख देने, दुख करने वाले को थोड़ा बहुत तो आप भी दंड दे दो, मैं नहीं दंड दू लेकिन आप दंड दे दो थोड़े बहुत को। बात सुनी तो भगवान ने कहा, देखिए महाराज दुर्वासा जी, आप उसे दंड देने की बात कह रहे हो, वो मुझे दंड दे तो मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं, आज मैं उनको दंड देऊं। आप दुर्वासा जी ने कहा उनको 100 जन्म दे दो, और दंड नहीं दे सकते हो तो 100 बार जन्म दे दो, बहुत है, थोड़ा बहुत भी हो जाए तो मेरे तुम्हारे छाती ठंडी हो जाएगी, कोई मारे बात भगवान उन्हें दंड दे दियो, 100 जन्म दे दो उसको। तो भगवान ने जवाब दिया, देखो दुर्वासा जी बात ऐसी है, मैं अपने भक्त के लिए जन्म ले सकता हूं लेकिन मैं उनको जन्म दे नहीं सकता, उनके बदले में मैं दुख भोग सकता हूं लेकिन मैं उनको दुखी नहीं कर सकता। हां आप अगर कहते हो अम्बरीश के कारण दशमी दुर्योधन, मैं उस अम्बरीश राजा के लिए आपकी बात को भी सत्य करना चाहता हूं, तो मैं 10 बार जन्म ले लूंगा लेकिन उसको जन्म नहीं लेने दूंगा, मैं उनकी जगह आपकी बात सच्ची करने के लिए मेरे 1 जन्म के बराबर उसका 10 जन्म, उसके निमित्त ही मैं जन्म लूंगा, 1 मेरे जन्म के बराबर उसके 10, इसलिए 10 जन्म लेंगूंगा, 10 × 10 कितने हो गए, 100 हो जाएंगे, आपकी बात पूरी हो जाएगी और उसके बदले में मैं दंड भोग लूंगा। इस कारण भगवान ने अम्बरीश के कारण 10 विध धर्योत्सवी, ये जो 10 अवतार है भगवान के, ये अम्बरीश राजा के लिए भगवान ने धारण किए हैं, जन्म धारण किए हैं, जन्म, इसलिए बताया कि हूं जन के हित धर्म बप कहता, मैं उनके लिए कितने ही जन्म धारण कर सकता हूं, मुझे लक्ष्मी प्यारी नहीं, मुझे और लोक की चाहना नहीं है, संत कह सोई में करूं वचना कर्म संग अनुसरूं, जो मुझे संत आदेश देते में वो काम करता हूं, मेरी बंदी हुई को संत महात्मा छुड़ा सकते हैं लेकिन संतों ने जिसको बांध दिया है मैं कुछ नहीं कह सकता उसके लिए, संत महादी वो जा बनावे, मैं उनकी रक्षा के लिए सदैव सुदर्शन को रखवाली के लिए रखता हूं, और मेरे द्रोह से भी ज्यादा द्रोह है, मेरे भक्तों के साथ में कोई द्वेष करता है तो उनसे भी बुरा दोष होता है, इसलिए मैं कभी भी इस प्रकार का कि भक्त के साथ में बुरा विचार भी नहीं कर सकता हूं। नैवात्मने प्रभुरेम निज लाभ पूर्णो, भागवत जी में प्रहलाद जी के वचन उक्षली भक्त के विषय में कहते हैं, नैवात्मने प्रभुरेम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुष कर्णो विणीति यद यद जनो भगवते विदधीत मानम तचात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री तस्मादहम विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना मही गृणामि यथा मनीषम नीचो दिया गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट है पुयेत ये रही अपमान अनुवर्णित एना। सर्वशक्तिमान परमात्मा जो साक्षात परिपूर्ण रूप है, जन साधारण द्वारा पूजा इत्यादि के कोई पूजा की आवश्यकता नहीं है, करुणार्ण होने के कारण भले ही भक्तों के द्वारा की गई पूजा को वे स्वीकार कर लेते हैं, पूजा कर दी तो भगवान देखते इसकी प्रसन्नता के लिए स्वीकार कर लो भगवान के, मेरी पूजा मुझे करानी है वो मैं नहीं चाहता, उसको मान रखने के लिए मैं सारा काम कर लेता हूं। इसलिए भगवान अविद्या के वशीभूत संसार में चल पड़ा हुआ जो जीव है वो मेरा आश्रय लेकर के परम पवित्र बन जाता है, ऐसे परमात्मा को बार बार वंदन करना चाहिए। ऐसे मैं भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए भक्त मुझे प्यारे हैं और भक्त मेरी मान्यता रखते हैं और दुनिया भी मेरी मान्यता रखती है, इसलिए मैं सदैव उनके प्रति सजग रहते करके उनका ध्यान किया करता हूँ। इस प्रकार ऐसे भक्तों के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, संतों के प्रति निष्ठा बताने वाले प्रभु के चरणों में, सभी संत महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए आज का विश्राम यहाँ पर कर लेते हैं। आगे का प्रसंग राम आज्ञा अनुसार अगले कल। कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे,
मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे,
सीता राम ने
भजन लावो लीजिए
रे,
सीता राम ने भजन लावो लीजिए
रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे,
मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे,
सीता राम ने भजन लावो लीजिए रे,
राधे श्याम ने भजन लावो लीजिए
रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए
रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे,
सीता राम ने भजन लावो लीजिए रे,
राधे श्याम ने भजन लावो लीजिए
रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए
रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे,
सीता राम ने भजन लावो लीजिए रे,
श्याम ने भजन लावो लीजिए
रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए
रे,
मुख राम कृष्ण
राम कृष्ण कीजिए रे,
सीता राम ने भजन लावो लीजिए रे,
राधे श्याम ने भजन लावो लीजिए
रे, सीता राम ने भजन लावो
लीजिए
रे, राधे
श्याम ने भजन लावो लीजिए।